نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علامات قیامت کا بیان. آج اس میں سے جو ہم ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے ظہور المہدیش. پیج ہے 191 بک کا. مہدی لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا روٹ کیا ہوگا؟ ہدن ہا دالیا. تو مہدی ہدایت دینے والا یعنی لیڈر یا رہنما کے نام پہ. یہ کون ہوں گے, کیسے ہوگا, آئیے ان کے بارے میں پہلے احادیث دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص عربوں پر حکومت کرے گا. کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگا. تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو؟ سید ہوگا نا اپنے نسب کے ناطے سے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا. یعنی اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. امام مہدی کا نام محمد ہوگا. ان کے والد کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا یعنی عبداللہ ہوگا. حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے یعنی آخری دن ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا, جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یہ جو بات ہے نا کہ دنیا کا صرف ایک ہی دن رہ جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ ان کا آنا لازمی ہے, کہ اللہ قیامت نہیں لائے گا جب تک کہ یہ شخص نہ آ جائے. خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا. بالآخر امام مہدی محمد بن عبداللہ کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے. امام موصوف یعنی وہ امام جن کی صفات بیان ہو رہی ہیں, ان کی بیعت مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی. امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والا لشکر بیدا یہ ایک جگہ کا نام ہے اس کے مقام پر دھنس جائے گا. امام مہدی کی یہ کرامت دیکھ کر عراق اور شام کے علماء و فضلاء جوک در جوک امام صاحب کی بیعت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایک خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا. بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا, لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام میں لے آئیں گے, حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے. شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا. جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو اسے دھسا دیا جائے گا. اس کے بعد عراق اور شام سے علماء و فضلاء امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے. اسے طبرانی نے روایت کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص کے جس کے اوپر یعنی یہ سارے معاملات پیش آئیں گے, اور خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تعلق پھر مکہ سے ہی ہوگا تاکہ وہاں پہ پھر یہ بیعت کا معاملہ ہوگا. بیعت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے. ابتدا میں امام موصوف کے ساتھیوں کی تعداد اور وسائل بہت کم ہوں گے اور وہ کسی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ خصف کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائیں گے. خصف کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پڑ چکے ہیں نا, زمین پھٹے گی اور اس میں لوگ گم ہو جائیں گے. یہ مسلم کی روایت ہے. حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس گھر یعنی کعبۃ اللہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی, نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا. ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا. وہ بیدا کے مقام پر پہنچیں گے تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یہ مسلم کی روایت ہے. بیدا کے مقام پر دھسنے والے لشکر میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو واپس جا کر حکومت کو کامیاب بغاوت یعنی انقلاب کی خبر دے گا. یعنی زمین پھٹے گی اور سب لوگ اس میں جائیں گے, صرف ایک شخص بچے گا جو جا کے یہ خبر دے گا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ دھنس گئے. کتنا زبردست قسم کا آپ دیکھیے کہ وہ وقت ہوگا. حضرت सर हफ्सा ने नबी सल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक लश्कर बैतुल्ला शरीफ पर हमला करने की नीयत से जब बैदा के मुकाम पर पहुंचेगा तो पहले इस लश्कर का कल्ब यानी दरमियानी हिस्सा जमीन में धंसेगा, तो आगे का हिस्सा पिछले हिस्से को मदद के लिए पुकारेगा, लेकिन सब के सब जमीन में धस जाएंगे सिवाय एक कासिद के, वही वापस जाकर लोगों को खबर देगा। ये मुस्लिम की रिवायत है। इमाम महदी की खिलाफत और दीगर उमूर खिलाफत सिर्फ एक रात में तय हो जाएंगे, यानी ये कोई प्री प्लान नहीं होगा, एक रात के अंदर ये सब कुछ होगा। हज़रत अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, महदी हमारे अहले बैत में से होगा और अल्लाह ताला इसकी खिलाफत का इंतज़ाम एक ही रात में फरमा देगा। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। अब ये कैसे होंगे, कितनी देर दुनिया में रहेंगे? तो इमाम महदी का दौरे खिलाफत 7 साल का होगा, यानी 7 साल तक ये मुसलमानों के खलीफा बनेंगे। आप आज की ज़ुबान में इसको ये कह लें कि ये एक यूनिवर्सल लीडर होंगे जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करेंगे। आज भी हम सोचते हैं ना, कभी हालात इस तरह के बिगड़े हुए हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ, तो हमारा दिल करता है कि कोई एक ऐसा मुसलमान आ जाए कि जो वाकई इस सारे मुसलमानों के हालात संवारे। तो ये कुछ इस किस्म की कैफियत है। हम जब आखिर तक इनके बारे में अहादीस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हमारे जहन में क्लियर होगा, जिसको हम एंड पे खुलासे में देखेंगे। अगली बात इनके बारे में क्या है कि इमाम महदी कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले होंगे, यानी इनका फीचर्स भी बताए गए हैं कि माथा चौड़ा होगा, नाक इनकी लंबी होगी। इमाम महदी अपने दौरे हुकूमत में मुकम्मल अदल और इंसाफ कायम करेंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, महदी मुझसे होगा, इसकी पेशानी कुशादा और नाक ऊंची होगी, ज़मीन को अदल और इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह वो जुल्म और जोर से भरी हुई थी। आजकल ऐसे ही लगता है ना, तो आने वाला दौर अच्छा दौर होगा। वो 7 साल तक हुकूमत करेंगे, इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। खलीफा महदी के ज़माने में दौलत की इस कदर फरावानी होगी कि वो अवाम में बिला हिसाब किताब दौलत तकसीम कर देंगे। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, आखिरी ज़माने में एक खलीफा होगा जो माल बग़ैर गिनती के तकसीम करेगा। मुस्लिम की रिवायत है। ये कब होगा? जब दुनिया में इस्लाम आएगा, यानी इतना माल होगा कि लोग गिन ही नहीं सकेंगे, और खलीफा लोगों को भर भर के थैलों में जैसे दे दे कि ले जाओ, इतना माल होगा। आज भी यही बात है, हम अगर इस्लाम को नाफिज करें तो आसमान से भी बरकतें उतरें और ज़मीन से भी। सूरत अल अनाम, सूरत अल अराफ और इसी तरह आगे बहुत सारी जगहों में हम कुरान पाक के मक्की जो दौर की सूरतें उसमें पढ़ते हैं कि अगर लोग ईमान ले आएँ, तकवा इख्तियार करें, तो अल्लाह उनको ज़मीन से भी रिस्क देगा, आसमान से भी देगा। इमाम महदी फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और इमाम महदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे। ये वो निशानी है जो बड़ी निशानी है ना दास, तो एक के बाद दूसरी शुरू होती जाएगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक के लिए लड़ता रहेगा, वो गिरोह क़यामत तक हक पर गालिब रहेगा। जब हज़रत ईसा बिन मरियम आसमान से नाजिल होंगे तो मुसलमानों का अमीर हज़रत ईसा से गुजारिश करेगा, तशरीफ़ लाएँ और हमें नमाज़ पढ़ाएँ। हज़रत ईसा जवाब में फरमाएंगे, नहीं, तुम खुद ही आपस में एक दूसरे के इमाम हो। ये इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एजाज़ है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। हज़रत ईसा का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आना उम्मत मोहम्मदिया के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। अब आप देखिए कि ये सारी बातें जो हम सुन रहे हैं हज़रत ईसा और इमाम महदी के बारे में, तो इस सारी बातों को सुनकर जो हमारे जहन में तसव्वुर आना चाहिए वो क्या है, जिसको हम सारी बातों को जमा करें कि जब दुनिया में बहुत सारे फितने होंगे जैसे आज हैं, हर एक अपनी भांत भांत की बोली बोलता है, कोई कुछ कोई किसी तरह की बात करता है, जब मुसलमानों के हालात अल्लाह ताला संवारना चाहेंगे, इसमें वक्त बहुत लगेगा। अभी हालात तो लग रहा है कि अभी इमाम महदी के आने के कोई असरात नहीं है, ये सब बिगाड़ बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। पूरी दुनिया में जब इस तरह के फितने होंगे ना, तो अल्लाह ताला इस्लाह के लिए एक शख्स को इमाम बनाकर भेजेंगे। इमाम क्यों बनेंगे? क्योंकि नबुवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। पहले दौर में जब लोगों में बिगाड़ आता था ना, तो नबी आते थे। अब नबी सल्लम तो चूंकि दुनिया से चले गए, आखिरी नबी थे, अब आपकी उम्मत चूंकि इस काम पे फायज है ना, तो छोटे छोटे पैमाने पे तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें पूरी दुनिया में कोई एक मजमूई लीडर नहीं दिखता। इमाम महदी एक यूनिवर्सल मुस्लिम लीडर बन के आएंगे और ये सारे मुसलमानों को यूनाइट करेंगे, और इनका सिम्टम्स ऐसी हैं जो कुरान और हदीस से दिख रहा है कि इनका ताल्लुक कुरान और सुन्नत से होगा। और इस तरह सब जब ये लोगों को इस्लाम देंगे, लोगों में 6-7 साल तक हुकूमत करेंगे और उसके बाद दुनिया में बरकतें शुरू हो जाएंगी। हकीकत है। और इनके फौरन बाद अभी हमने सुना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो इससे लगता है कि फिर हज़रत ईसा का और इनका दौर करीब है, तो ये गोया कि हज़रत ईसा के आने के लिए ज़मीन हमवार हो रही है। लेकिन याद रखिए कि उम्मत मुस्लिमा के एक फ़र्द होंगे, ना ये अलग नबी होंगे, क्योंकि बस फिरके भटके ना इन्हीं हदीसों को पढ़ के। कितने लोग आज देखिए कि नबी सल्लम के बाद नबी बन के आने की बुनियाद पे इस्लाम से निकल गए ना। इसी तरह कई इमाम मासूमैन जो है, मासूम इमामों के नाम पे बाज़ दफ़ा लोग इनको मिलाते हैं, तो बस इनका नाम, लफ्ज़ इमाम जो है ना, असल में लीडर है। असल में ये वही काम करेंगे जो अल्लाह ने अपने दौर में अम्बिया कराम से लिया था। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ ज़यीफ़ रिवायतें भी हैं, उसको देख लेते हैं। यानी आप जब हम पढ़ने लगे ये हदीसें दुरुस्त नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, यानी खुरासान से स्याह झंडों वाले लोग निकलेंगे और इन झंडों को बैतुल मक़दस पर नस्ब करने से इन लोगों को कोई चीज़ रोक नहीं सकेगी। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। तो ये हदीस नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्ला की तहरीक के मुताबिक ज़ईफ़ है। इसी तरह एक और रिवायत है, हज़रत हारिस बिन जुज़ल ज़ुबैदी कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मशरिक से कुछ लोग आएंगे और महदी की हुकूमत को मुस्तहकम करेंगे। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। ये रिवायत भी नासिरुद्दीन अल्बानी ने ज़ईफ़ करार दी है। तो बहरहाल सारी बात के बाद हमें जो बात समझ आती है कि ये वो दौर होगा कि जब दुनिया में इस्लाम को गलबा होगा और हज़रत ईसा के साथ ही मिला हुआ इनका दौर होगा। मुझे ऐसे लगता है कि क़यामत से पहले अभी बहुत सारे हालात ऊपर नीचे होने हैं। आप देखेंगे आजकल कुफर को गलबा दिखता है ना, गैर मुस्लिम कल्चर आम है। ये वो वक्त होगा जब मुस्लिम कल्चर आम होगा और इस्लाम की बुनियाद पर लोग जमा होंगे। अब ये सारी बातें तो हो रही होंगी, लेकिन सबसे बड़ा फितना जिसके बारे में हर नबी ने अपनी कौम को आगाह किया, अल्लाह के नबी सल्लम ने सहाबा को इतना ज़्यादा उसके बारे में बताया कि सहाबा कराम कहते हैं कि एक दिन हम बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लम ने हमें बताया और इस तरह के हालात बताए दज्जाल के बारे में कि हमें लगा कि अभी झाड़ियाँ हटेंगी और उसमें से दज्जाल निकल आएगा। तो आइए अब हम देखेंगे कि दज्जाल का फितना कैसा बड़ा फितना होगा। ज़ुहूरुल मसीही दज्जाल टॉपिक है हमारा, बुक का पेज है 197, मसीह दज्जाल का ज़हूर। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए पहले से, फिर बात वाज़े हो जाएगी। आप देखिए कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहते हैं ना नसारा क्रिश्चियंस, और हज़रत ईसा का नाम भी कुरान पाक में जो पूरा नाम आता है वो यही है, मसीह हुई सबने मरियम। ठीक है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर जो आज अपने आप को ईसाई कहते हैं ना, वो हज़रत ईसा को चूँकि मसीह कहते हैं ना, तो उनके मुकाबले में यहूद अपने बड़े दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी जैसे हज़रत ईसा क्रिश्चियंस के पढ़े हैं ना, और उनका दुनिया में अब दोबारा आना वो हम इसके बाद पढ़ेंगे अगला टॉपिक इंशाल्लाह, लेकिन दज्जाल का इंतज़ार इस वक्त यहूद कर रहे हैं। आपको इसकी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पहले इसका हम टॉपिक हदीसों से पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। क़्यामत से कबल दज्जाल ज़ाहिर होगा, हदीस आगे आएगी इंशाल्लाह। दज्जाल के खरूज की इब्तिदा ईरान के शहर खुरासान से होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हमें आगाह फरमाया, दज्जाल मशरक़ की सरजमीन से निकलेगा जिसका नाम खुरासान है। चमड़ा भरी ढालों जैसे चेहरों वाले लोग इसके साथ होंगे। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। क्या मुराद है? पुर चपटे यानी गोल चेहरे। अब आप देखिए कि अल्लाह को पता ये कौन सा कौम है, लेकिन अगर हम गौर से दुनिया के नक्शे पे देखें तो हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं, राउंड फेसेस होते हैं, फीचर्स उनके बहुत छोटे होते हैं, दबे हुए फीचर्स हैं। तो अल्लाह नोज़ दी बेस्ट, अल्लाह के नबी ने किसी कौम का नाम नहीं लिया, सिर्फ सिम्टम्स बता दी। दज्जाल का ज़हूर ऐसे वक्त में होगा जब लोग इससे बिल्कुल गाफिल हो चुके होंगे। हज़रत साहब बिन जसामा कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है, दज्जाल जाहिर नहीं होगा मगर इस वक्त जब लोग इसे बिल्कुल भूल चुके होंगे, हत्ता कि आयमा यानी मसाजिद और मिम्बरों पर इसका जिक्र करना भी छोड़ देंगे। ऐसा है, यानी लोग इसके बारे में इतने क्यूरियस नहीं रहेंगे, उस वक्त आएगा। किसी बात पर गजबनाक होना दज्जाल के खरूज का सबब बनेगा। हज़रत हफ्सा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का लोगों के सामने निकलने का पहला सबब इसका गुस्सा होगा जो इसे गजबनाक बना देगा। मुस्लिम की रिवायत है। लफ्ज़ थोड़ा सा हम समझ भी लेंगे। देखिए कि जो लफ्ज़ दज्जाल है ना, इसके लिए लफ्ज़ सबसे पहले क्या आता है, मसीह। तो अरबी जुबान में मसीह के मुख्तलिफ मानी है। सूरह मायदा में आप पढ़ चुके हैं, किसी को याद है, सूरह आल इमरान में भी गुजरे थे। मसख से पहुंचने वाला, मसा करते हैं ना हम सर का, वही लफ्ज है, पहुंचने वाला, किसी चीज पर हाथ फेरने वाला, किसी बीमारी के लिए आफियत की दुआ करने वाला, यानी कोई बीमार है तो मसीह वो शख्स है जो लोगों के लिए दुआ करता है कि अल्लाह इनको सेहत दे दे। इसी तरह बहुत ज्यादा सच बोलने वाला, यानी बहुत ट्रुथफुल पर्सन को भी मसीह कहते हैं। इसी तरह मसीह का लफ्ज सियाहत से है, टूरिज्म जिसको आप आज कहेंगे, सफर करने वाला। अब हजरत ईसा के लिए तो ये सारे लफ्ज ईसाइयों ने जो इस्तेमाल किए वो तो वजह समझ आती है। सवाल पैदा होता है कि मसीह का लफ्ज दज्जाल के लिए क्यों इस्तेमाल होता है? तो लफ्ज मसीह जो है ना, इसके जो मानी है ना, उसके कुछ ऑपोजिट मानी भी है। मसलन अगर सच्चे को कहते हैं ना, तो मसीह आंख से काने को कहते हैं, यानी जिसकी एक आंख काम ना करे। फिर इसी तरह बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाले को भी कहते हैं और बहुत ज्यादा सफर करने वाले को भी कहते हैं। तो ये जो दज्जाल है, इसको मसीह इसलिए कहेंगे कि ये पूरी दुनिया का सफर करेगा, सिवाय मक्का और मदीना में इसको दाखिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी, इसके अलावा सब जगह जाएगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक आंख से काना होगा और बहुत सारे झूठ बोलेगा। और लफ्ज दज्जाल क्या है? दजल से, दाल जीम लाम इसका रूट है। ये हम कुरान में जब तफसीर में आएंगे तो इस पे बहुत तफसील से हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दज्जाल का लफ्ज़ जो है ये मुबालगे का है, और फरेब जैसे आप कह सकते हैं ना, ट्रिकरी, किसी को ट्रिक करना, फ्लैटरी, इस तरह की चीज़ है, बहुत झूठ बोलने वाला और बहुत फरेब देने वाला। अब ये कौन है, कहाँ है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। दज्जाल बहरे हिंद के किसी नामालूम जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यानी आज भी मौजूद है और जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हजरत फातिमा बिनत कैस से रिवायत है, एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के लिए देर से तशरीफ लाए, यानी जो आम टाइम होता था उससे थोड़ी देर से आप आए, और फरमाया, मुझे तमीमदारी, जो एक ईसाई आलिम थे बाद में मुसलमान हो गए, इनकी बातों ने रोक लिया। यानी खड़े हुए बात कर रहे थे तो बात लंबी हो गई। क्या बात कर रहे थे? वो मुझसे कर रहे थे कि तमीम ने एक आदमी के हवाले से मुझे बताया कि वो आदमी समंदर के किसी जजीरे पर कश्ती के समंदरी तूफान में फंस जाने की वजह से पहुंच गया, जहां इसे एक औरत मिली जो अपने बालों को खींच रही थी। इस आदमी ने औरत से पूछा, तू कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं दज्जाल की जासूस हूँ, तू जरा इस महल की तरफ आ। मैं इस महल में चला गया, वहां मैंने एक आदमी को देखा जो बालों को खींच रहा था। तौक और सलासिल, तौक कहते हैं जो गले में हो, और सलासिल सिलसिला से जंजीरें, यानी जंजीरों और तौक में जकड़ा हुआ था और जमीन और आसमान के दरमियान उछल कूद कर रहा था। मैंने पूछा, तू कौन है? इस आदमी ने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूँ। फिर दज्जाल ने पूछा, क्या उम्मियों के नबी जाहिर हो गए? कौन? नबीम। इस आदमी ने जवाब दिया, हाँ। दज्जाल ने पूछा, लोगों ने इसकी इताअत की है या नाफरमानी? इस आदमी ने कहा, इताअत। दज्जाल ने कहा, ये इनके लिए अच्छा है। ये अबू दाऊद की रिवायत है। तो इधर से एक बात तो पता चली कि दज्जाल आज भी मौजूद है और इसको जंजीरों में बांध के जमीन आसमान में लटकाया हुआ है। अगली रिवायत देखिए, हज़रत फातिमा बिनत कैस कहती हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, आगाह रहो, दज्जाल शाम या यमन के समंदर में मौजूद है। फिर फरमाया, नहीं, बल्कि वो शाम मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है। फिर आपने अपने हाथ मुबारक से मशरिक की तरफ इशारा किया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी ने पहले शाम का जिक्र किया, फिर यमन के समंदर का जिक्र किया, फिर इसी की तरदीद करके मशरिक के समंदर का जिक्र किया, तो ये सब कुछ क्यों है? वही की बुनियाद पे थे। यानी किसी बात को ज्यादा गौर से सुनाना ना, तो आप एक बात कह देंगे तो सब कहेंगे ऐसा ही है, लेकिन जब कहेंगे ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, तो जो आखिरी बात होती है ना वो ज्यादा याद रहती है। तो गोया कि याद दिलाना था कि ये मशरिक की तरफ होगा। अब दज्जाल कौन है? बाज़ लोगों ने टीवी को दज्जाल कहा, बाज़ ने नेट को कहा। तो क्या दज्जाल एक किरदार है या कोई मशीन है? इसको भी देखिए, तो ये एक इंसान होगा, मदीने के यहूदी घर में पैदा होने वाला साफ, यानी इसका नाम क्या, साफ। दज्जाल है जो पहले इस्लाम लाया फिर बाद में मुर्तद हो गया। साफ की कुनियत इब्ने सैयाद या इब्ने साइद है। हजरत अबू सईद कहते हैं कि इब्ने साइद ने मुझसे कुछ बातें की जिनकी वजह से मुझे बुरा कहने में शर्म महसूस हुई। कहने लगा, मैंने अपने बारे में लोगों से माजरत की कि मैं दज्जाल नहीं, लेकिन ऐ सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम नहीं तुम्हें मेरे बारे में क्या गुमान हो गया। क्या रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया कि दज्जाल यहूदी होगा और मैं तो मुसलमान हूँ? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल की औलाद नहीं होगी और मेरी औलाद है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने दज्जाल का मक्का में दाखिल होना हराम किया है और मैंने तो हज किया है। वो ऐसी बातें करता रहा, करीब था कि मैं इसकी बातों पर यकीन कर लेता, लेकिन साथ ही इसने कहा, वल्लाही मैं अच्छी तरह जानता हूँ दज्जाल इस वक्त कहाँ है, इसके माँ बाप को पहचानता हूँ। लोगों ने इब्ने साइद से पूछा, तुझे पसंद है कि तू ही दज्जाल हो? यानी खुद था, अपने बारे में लोगों को बता रहा था। तो कहने लगा, अगर मुझे बनाया जाए तो मैं नापसंद नहीं करूँगा। जो मुस्लिम की रिवायत है, इसको कहते हैं ना दज्जाल, ट्रिकरी बातें करना, सीधी बात नहीं बताई। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हाँ पॉसिबल है दिस एंड दैट। फिर से पता चलता है कि ये लोगों को अपनी बातों के शहर में उतारेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के साथ थे, हमारा गुजर बच्चों से हुआ जिनमें इब्ने सैयाद भी था। तमाम बच्चे भाग गए लेकिन इब्ने सैयाद बैठा रहा। आपको ये बात बुरी लगी, आपने फरमाया, तेरे हाथ गुबार आलूद हों, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? वो बोला, नहीं। यानी साफ आपका मुनकर हुआ। फिर इब्ने सैयाद कहने लगा, क्या तू यानी हजरत मोहम्मद सल्लम की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? हजरत उमर जो कि उस वक्त आपके साथ थे, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं इसे कत्ल कर दूँ। किस बात पे? मुर्तद हो गया ना अल्लाह के नबी का इनकार करके। आपने फरमाया, अगर ये वही है जिसका तुझे शक है यानी दज्जाल, तो फिर तू इसको कत्ल नहीं कर सकता, मतलब ये कि इसको कोई और कत्ल करेगा। ये मुस्लिम की रिवायत है। तो अहले इल्म क्या कहते हैं कि इब्ने सैयाद ही वो दज्जाल है जिसे अल्लाह ताला के हुक्म पर फरिश्तों ने आज भी किसी जजीरे पे बांध रखा हुआ है और क्यामत के करीब वो जाहिर होगा। अगरचे वो मदीना में पैदा हुआ और मक्का मुकरमा में हज किया लेकिन बाद में मुर्तद हो गया। जब वो फितने पैदा करने के लिए जाहिर होगा तो फिर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। पहले तो दुआ कीजिए कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अपने दौर में नेक था ना, मुसलमान भी था, मक्का में पैदा हुआ, इसके बावजूद देखिए जब अकल घूमती है तो इंसान गलत काम करता है। अब नहीं दाखिल हो सकता लेकिन पहले था। अब इसका हुलिया क्या है? सहाबा ने भी पूछा था कि अल्लाह के नबी हमें बताइए कि अगर हमारे सामने दज्जाल आ जाए तो हम उसको कैसे पहचाने? तो आइए देखते हैं। हुलियतुल दज्जाल, दज्जाल का हुलिया। दज्जाल की एक आंख कानी और इसके सर के बाल घुंघरियाले होंगे, रंग सुर्ख और जिस्म भारी होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तवाफ कर रहा हूँ, अचानक मैंने एक आदमी को देखा गंदम गो यानी वीटिश, गंदमी रंग, सीधे बालों वाला, इसके बालों से पानी टपक रहा है जैसे अभी अभी गुसल किया हो। मैंने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने बताया, ईसा इब्ने मरियम। फिर मैंने दूसरी तरफ तवज्जो की तो एक सुर्ख रंग का मोटा आदमी नजर आया जिसके सर के बाल घुंघरियाले, आंख कानी थी जिस तरह फूला हुआ अंगूर हो। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि ये दज्जाल है। ये बुखारी की रिवायत है। यानी इसकी एक आंख की जगह पे जैसे एक वो फूला हुआ गुब्बारा सा नहीं होता, इस तरह की चीज है और रंग इसका सुर्ख होगा। दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। हजरत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को काने और झूठे दज्जाल से न डराया हो। आगाह रहो वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं, और दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। इसे बुखारी की रिवायत है। यहाँ तक आपने फरमाया कि काफिर का लफ्ज़ हर मुसलमान पढ़ लेगा चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, और ये आपको था कि खुद को खुदा कहेगा, इतना इसका बहुत शदीद है। इसीलिए तो आपको सूरह कहफ की आयतें याद करवा रहे हैं शुरू की, क्योंकि ये फितना दज्जाल से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने रेकमेंड की। दज्जाल के सर पर बहुत ज्यादा बाल होंगे। हजरत हुजैफा कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, दज्जाल बाई आंख से काना है, इसके सर पर बहुत ज्यादा बाल होंगे, इसके साथ जहन्नम और जन्नत होगी। खबरदार, इसकी जहन्नम जन्नत होगी और जन्नत जहन्नम होगी। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। कैसे ये फितने फैलाएगा, इसको पढ़ लें फिर बात करेंगे। दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम दोनों होंगी। हकीकत में इसकी जहन्नम जन्नत होगी और जन्नत जहन्नम होगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बात ना बताऊं जो इससे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई? वो ये है कि दज्जाल काना होगा और वो अपने साथ जन्नत और जहन्नम जैसी चीजें लेकर आएगा। जिसे वो जन्नत कहेगा दरअसल वो जहन्नम होगी, और जिसे वो जहन्नम कहेगा वो जन्नत होगी। ये मुस्लिम की रिवायत है। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने दज्जाल के बारे में इरशाद फरमाया, इसके साथ आग और पानी होगी, दर हकीकत इसकी आग ठंडा पानी होगा और इसका पानी आग होगी। खबरदार अपने आप को हलाक ना करना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। क्या पता चला कि जो इसको रब मान लेगा ना, उसको ये आग में डालेगा लेकिन वो आग ठंडी हो जाएगी, और जो इसके कहने पे ना चला, ये उसको आग में डालेगा तो उसके लिए जन्नत बन जाएगी। दज्जाल के पास पानी होगा जो दर हकीकत आग होगी, और आग होगी जो दर हकीकत शीरी मीठा पानी होगा। हजरत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि दज्जाल जब निकलेगा तो इसके पास पानी और आग होंगे। जिसे लोग पानी समझेंगे वह दर हकीकत जलाने वाली आग होगी, और जिसे लोग आग समझेंगे दर हकीकत वो ठंडा शीरी पानी होगा। बस तुम में से जो कोई वो मौका पाए तो इसे चाहिए कि वो आग में कूद पड़े, क्योंकि वो मीठा और पाकीज़ा पानी होगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अब आप देखिए कि इस बात पे कौन इतबार करेगा, जिसका ईमान होगा ना अल्लाह के नबी की बात पे। सामने आग और कोई के कूद पड़ो ये पानी है, तो अकल इस्तेमाल करने वाले होंगे? ये तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम थे ना, कि अल्लाह के हुक्म से आग में भी चले गए तो अल्लाह ने उस आग को ठंडा कर दिया। तो ये इस टॉपिक को पढ़ने का एक फायदा होता है सुनने से, कि हमें पहले से पता है, कूद पड़िए जो होगा देखेंगे। लेकिन तारीख गवाह इस बात पे कि जब तक ईमान नहीं होता, इंसान ऐसी चीजों पे मालूम होने के बावजूद भी कहता है अकल इस्तेमाल करो, गौर से देखो ये कैसे है, और उस दौर में भी ऐसा ही होगा। दज्जाल के हुक्म से आसमान से बारिश बरसेगी, जमीन से घास और अनाज वगैरह उगेगा, जानवर पहले से ज्यादा दूध देना शुरू कर देंगे। अब आप देखिए, बातिल है लेकिन फवायद दे रहा है। आज दुनिया में हम कोई हराम चीज सुनते हैं और उसके फवायद गिनवाना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं, अच्छा अगर ये बुरी है तो इसके ये फायदे क्या है? तो अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि हराम चीज के दुनिया में फायदे नहीं होंगे, और ये कभी नहीं कहा कि हलाल चीज से हमेशा दुनिया में भी तुम्हें फायदा ही मिलेगा। अल्लाह आजमाता है, यही इस लोगों की आजमाइश होगी। हजरत नवाज बिन समान कहते हैं कि एक रोज रसूलुल्लाह ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, जमीन में इसका घूमना किस तेजी से होगा? आपने फरमाया, इस बारिश की तरह जिससे हवा पीछे से धकेलती है। वो एक कौम के पास आएगा और इन्हें अपने ऊपर ईमान लाने की दावत देगा। वो ईमान ले आएंगे और इसकी बात मान लेंगे। चुनाचे वो आसमान को हुक्म देगा और वो बारिश बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा और वो नबातात उगाएगी। शाम के वक्त लोगों के जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो इनकी कोहाने पहले से बड़ी होंगी, यानी उनको कुव्वत का और ताकत का अंदाजा होगा, और पसलियां खूब भरी होंगी, यानी जानवर मोटे ताजे नजर आएंगे। ये इस कौम के ईमान लाने का सिला होगा। फिर वो दूसरी कौम के पास जाएगा और इन्हें अपने ऊपर ईमान लाने की दावत देगा, लेकिन वो इसकी दावत का इनकार कर देंगे। चुनाचे दज्जाल वहां से चला जाएगा और इन पर कहर साली मुसल्लत हो जाएगी, और इनके मालों में से कुछ भी इनके पास न रहेगा। दज्जाल वीरान जगह की तरफ चला जाएगा और जमीन को हुक्म देगा कि अपने खजाने उगल, तो जमीन अपने खजाने इस तरह निकाल कर जमा कर देगी जिस तरह शहद की मक्खियां बड़ी मक्खियों के गिर्द हजूम करती हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है। क्या पता चला कितनी जबरदस्त आजमाइश होगी लोगों के ईमान की। अल्लाह तो हमें इससे पहले ही उठा ले, क्योंकि ये फितनों में तो बहुत मजबूत लोग ईमान अपना कायम रखेंगे। शैतान जो है वो लोगों के दिलों में वसवसे डालेगा। तो इन सारी बातों को सुनते हुए ये ना सोचिए कि वो खुदा है या उसके पास अल्लाह के कुछ इख्तियार आते हैं। अगर वो खुद कुछ कर सकता तो पहले अपनी कानी आँख ही ठीक कर लेता, और अपने सर के ऊपर लिखा हुआ जो बीच में लफ्ज़ है काफिर, उसको मिटा लेता। ठीक है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को नहीं गौर करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को सुनते हुए दिल में ख्याल रखना चाहिए कि ये सब कुछ जो है वो अल्लाह के हुक्म से होगा, हमने अपने ऊपर इसको नहीं लेना। बस आखिरी बात पढ़ेंगे आज के सेशन की कि ज़हूरे दज्जाल के बाद किसी का ईमान लाना काबिले कबूल नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तीन बातें जाहिर होने के बाद किसी ऐसे शख्स को ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा जो इससे पहले ईमान नहीं लाया, हालत ईमान में कोई नेक काम नहीं किया। वो तीन अलामतें कौन सी हैं? सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल का जाहिर होना और दाबतुल अर्ज का निकलना। ये मुस्लिम की रिवायत है। अब दज्जाल की बातें अभी हम पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह अगले सेशन में कंटिन्यू होंगी। और इससे पहले आपको जितनी भी अभी हमने बातें पढ़ी हैं इमाम महदी और इनके बारे में, इसको हल्का सा खुलासा दे के आगे लेके चलेंगे। लेकिन जो बाकी दो अलामतें हैं, सूरज का मगरिब से तुलू होना और दावतुल अर्ज़ का निकलना, ये इंशाल्लाह हम अगले सेशन में देखेंगे। लेकिन हकीकत है कि दज्जाल के फितने से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। पूरे यकीन और ईमान के साथ फितनों से बचने की दुआएं भी पढ़िए। और सूरत काहफ की जो आयतें आपको कही जा रही हैं, अगर आप इसको साथ साथ मिलके याद कर लेते हैं तो एक आयत कोई बड़ी बात नहीं होती। और कुछ भी नहीं है तो कम अज़ कम हर जुमे को तो इसको पढ़ना ना छोड़ें। कोई सवाल जो सुनते वक्त आपके जहनों में आया हो या कोई बात आप शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जी, इनका सवाल बहुत अहम है कि ये नबी सल्लम के दौर से था और आज भी है तो इतनी लंबी उम्र है? बिल्कुल लंबी उम्र है। हज़रत ईसा मौजूद हैं अभी भी, वो तो अल्लाह के नबी से कितने सौ साल पहले के हैं। हज़रत ईसा आसमान पे, हम पढ़ेंगे होप कल के सेशन में इंशाल्लाह। हज़रत ईसा की बहुत सारी बातें होंगी। हज़रत खिजर की उम्र बहुत लंबी है। हज़रत नूह को अल्लाह ने 900 साल क्या 1,000 साल, मुसलमान था फिर मुर्तद हो गया, तो इसको बांध दिया गया इस वक्त किसी जगह जाके से जजीरे में चेंट है इस वक्त। मैंने जब ये बचपन में सुना था कि कियामत जुमे को आएगी, बिलीव मी के बचपना कितना भोला होता ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी जुमे का दिन आता था ना तो मैं धड़का लगा रहता था, हाय कियामत ना आ जाए, कियामत ना आ जाए। जी, ये बातें हैं, अभी आगे हम और भी पढ़ेंगे। जिनका क्वेश्चन है कि डू द ज्यूज नो दे आर वेटिंग फॉर द जाल और दे वेटिंग फॉर अ नबी, जी इस पे कल बात करेंगे हम। आपको तो कि यहूद को कितना ज्यादा पता है इन बातों का, आगे आप इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा इस पे आपके सवाल का जवाब कल मिलेगा। ये लिखते हैं कि अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को इन फितनों से महफूज रखे और ईमान की सलामती अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो ठीक है, जजाक अल्लाह खैर, ज्यादा आपका वक्त नहीं लेते, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल दोबारा मिलते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंत तवाब रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।